फिर छात्र नमस्कार। तो अपन बात कर रहे थे कार्य की। जैसा कि पूर्व मैंने बताया कि बोर्ड की परीक्षा में कार्य संबंधी एक प्रश्न आएगा, जिसमें कार्य का प्रयोग यानी किस कार्य का प्रयोग हुआ है वाक्य में, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे कार्य की परिभाषा की। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कार्य का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध क्रिया के साथ जिनसे स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8ों की अलग अलग विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। जैसा कि कल अपन ने 2 कारकों के बारे में पढ़ा जाना, जिसमें कर्ता कारक और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने कर्ता कारक की परिभाषा में आपने जाना कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है वो ने। लेकिन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकालिक क्रियाओं में ही होता है। वर्तमान काल या भविष्य काल या क्रिया के अक्रमक रूप में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, कर्म कारक के बारे में जाना और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में सजीव शब्दों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव कर्म कारक के साथ विभक्ति यानी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि महेश दूध पीता है। अब दूध है वो निर्जीव कर्म है, इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। आज अपन बात कर रहे हैं तीसरे कारक की, और तीसरा कारक है वो है करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह है वो से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वाक्य में कर्ता अर्थात कार्य करने वाला यानी वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। ध्यान दें, ध्यान से समझें कि करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, अर्थात माध्यम या साधन, यानी कर्ता किस माध्यम से कार्य करता है। जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वो साधन को ही करण कारक कहते हैं। जैसे सीता चाकू से सब्जी काटती है, सीता चाकू से सब्जी काटती है, ये एक वाक्य है और बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ही वाक्य पूछा जाएगा। और उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो स्पष्ट है कि इसमें से विभक्ति आई है और से कौन से कारक की विभक्ति है, करण कारक की विभक्ति है। तो अब सीता किससे सब्जी काटती है, तो चाकू से, अर्थात चाकू यानी एक साधन या माध्यम है, तो यहाँ पर करण कारक है। जैसे दूसरा उदाहरण, मैं पेन से लिखता हूँ, अर्थात किससे लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, तो पेन द्वारा कार्य हो रहा है, अर्थात पेन द्वारा क्रिया हो रही है, यानी जिस साधन से या जिस माध्यम से कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर चाकू और पेन से क्रियाएँ हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों वाक्यों में करण कारक है। अगला जो चौथा कारक है वो है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है के लिए या के वास्ते। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जब वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता या तो कुछ देता है या जिसके लिए वो कार्य करता है क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। किंतु ध्यान देने की बात है कि जब क्रिया द्विकर्मी हो अर्थात एक ही वाक्य में दो कर्म साथ में मौजूद हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। वैसे को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का है लेकिन ऐसी स्थिति में जब क्रिया द्विकर्मी यानी क्रिया में दो कर्म हो और देने के अर्थ में वो प्रयुक्त हो तो के लिए के स्थान पर को विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाया लाया। परिभाषा में देखा कि वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है। अब आलोक दवाया किसके लिए लाया है? अपनी माँ के लिए लाया है तो के लिए विभक्ति चिन्ह आया है तो इसका मतलब यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो ये हुई आज दो कारकों की बात जिसमें करण कारक यानी कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है या क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ अर्थात क्रिया किससे हो रही है? पेन से हो रही है। संप्रदान कारक में वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाया लाया है। तो इस प्रकार ये दो कारक कंप्लीट हुए। इसी के साथ धन्यवाद।